والأنبياء والمرسلين وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. हम जो दर्स शुरू कर रहे हैं इमामिया ब्रेशिया की जानिब से जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो आयतुल्ला दसगे की किताब गुनाहाने कबीरा या बड़े गुनाहों के इनवान से है। आज उसकी एक इब्तदाई दर्स होगा और इस दर्स में हम गुनाहाने कबीरा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि गुनाह का मतलब क्या है। इसको हम आज सिर्फ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो गुनाह असल में हमारी जितनी भी सबसे बुनियादी तौर पर नियत है, नियत से भी हमारे ताल्लुक रखता है गुनाह, हमारी एक्शन या अमल से भी जो है गुनाह ताल्लुक रखता है, और इसी तरह जो है गुनाह जो है हमारे लफ्ज़ और अल्फाज और जो बातें हम करते हैं अक्वाल जिनको कहते हैं उनसे भी गुनाह ताल्लुक रखता है। यानी खुलासा, गुनाह उन अक्वाल और नियात और आमाल और हरकात को कहते हैं जो दीन के खिलाफ हों और शरीयत के खिलाफ हों और शरीयत ने उसे नापसंदीदा और तहजीब और शाइस्तगी से गिरा हुआ काम कहा है कि ये तहजीब के खिलाफ है, ये इंसान के लिए अच्छा नहीं है। और फिर शरीयत ने यह भी बताया है कि इसके जो नताइज हैं वो बाज़ औक़ात दुनिया में भी और ज़्यादातर इसके जो नताइज हैं आखरत में बहुत ही बुरे और इंतहाई जो है भयानक किस्म के इसके नताइज निकलेंगे। और साथ ये मेंशन किया है कि क्योंकि इंसान एक खुदा की अशरफ मखलूक है लिहाजा उसकी शान में ये नहीं है कि वो ऐसी हरकतें करें या ऐसे इरादे रखे या फिर जो है ऐसी बातें करें। लिहाजा गुनाह जो है इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है। नियतों में भी गुनाह हो सकता है, फेल में भी गुनाह हो सकता है और बोलने में भी गुनाह हो सकता है। हर एक के अपने एक सर्कल और असरात और दायरे हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर हम चले जाएं कुरान मजीद की तरफ तो कुरान मजीद में जो लफ्ज़ गुनाह है उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और उसके मीनिंग्स मुख्तलिफ यानी एक ही हैं कि वो गुनाह है। ये मुख्तलिफ इस्तेमाल होने की वजह यह है कि जो हरकत है या जो बोला गया है या जो अमल अंजाम दिया गया है वो असल में उससे को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तो उसी हिसाब से मसलन इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कत्ल को इस्तेमाल, कत्ल को जो है गुनाह के बदले में भी इस्तेमाल हुआ है यानी क्योंकि कत्ल से रिलेटेड चीज है तो उसको उसी तरह इस्तेमाल किया। इसलिए अरबी जबान में बहुत सारे जो वर्ड्स रिपीटेडली कुरान में हम गुनाह के लिए देखते हैं वो एक है ज़म्ब, ज़ुनूब इसी से है, ज़म्ब और ज़ुनूब, या इस्म, फीही इस्मुन मसलन कुरान मजीद में है, आमाल उस्सय्या मसलन बुरे आमाल, या मासियत इसियान से है खुदा की नाफरमानी करना, या बाज़ औक़ात का है खतिया, दुआए कुमेल में ये वर्ड्स बहुत ज्यादा मिलेगा कुरान में, इसी तरह जो है खतियात सयात खतियात आया, इसी तरह बाज़ औक़ात लफ्ज़ जुर्म जो कि उर्दू में भी यूज होता है, फारसी में भी लफ्ज़ जुर्म का इस्तेमाल हुआ है, इसी तरह बाज़ औक़ात मुनकिर लफ्ज जो है मुनकिर का भी इस्तेमाल हुआ है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है वो उसी के से रिलेटेड है, मुनकिर या मुनकर भी। एक और लफ्ज इस्तेमाल किया है वो फाहिशा का लफ्ज है, फाहिशा अखलाकी जो गुनाह है उनसे रिलेटेड ये लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह गुनाह को वैसे तो सारा गुनाह शर है लेकिन लफ्ज शर के तौर पर भी कुरान मजीद में लफ्ज आए हैं। बस इस तरह के जितने अल्फाज कुरान में आते हैं वो असल में गुनाह से ही ताल्लुक रखते हैं। अब आते हैं कि गुनाह की जो तकसीम है किस्में हैं। वैसे तो हम सब ने सुना है गुनाह है कबीरा है यानी बड़े गुनाह है, गुनाह है सगीरा है छोटे गुनाह है। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो बड़े गुनाह और छोटे गुनाह है ये गुनाहों को एक दूसरे से कंपेयर करके कहा जाता है, और क्योंकि हमारे पास हदीस में इस तरह के और कुरान में भी कुछ इस तरह की चीजें मौजूद हैं तो उसकी बेस पर हम जो है बड़े और छोटे की डिविजन्स करते हैं। अदरवाइज तो बड़ा छोटा यानी खुदा की जात के मुकाबले में कोई भी अमल हो वो बड़ा अमल है, गुनाह गुनाह है, बड़ा और छोटा मीनिंग्स नहीं रखता है, लेकिन गुनाह कंपेयर टू ईच अदर बड़े छोटे हो सकते हैं, और कुछ गुनाहों को बड़े का टाइटल दिया गया है तो हम उनको उसी तरह उसी कैटेगरीज में डालते हैं। एक तो ये पॉइंट था जो मेंशन करना था। दूसरा, कुछ गुनाह है जिस्मानी और कुछ गुनाह गैर जिस्मानी है। मसलन जिस्मानी गुनाह और गैर जिस्मानी गुनाह, यानी इंसान का जिस्म इन्वॉल्व है कुछ गुनाह में। मसलन आदमी किसी को मारता है, उसका हाथ इन्वॉल्व हो गया है, आदमी किसी को कोई बुरा लफ्ज कह देता है, उसका जबान उसमें इन्वॉल्व हो गई है, आदमी जो है किसी के साथ कोई ऐसा चीट करता है जो हाथों वाला है। दूसरा जो गैर जिस्मानी गुनाह जिसको हम कहेंगे, तो वो है इंसान की नीयत है, इंसान की सोचों में है, जैसे हसद है गुनाह है, हसद बुग्ज है, किसी के लिए बुराई सोचना है दिल के अंदर, ये गैर जिस्मानी गुनाह है, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं उसके लिए बुरा, जब तक बुरा नहीं करूंगा गैर जिस्मानी रहेगा, जब बुरा करूंगा तो वो जो है जिस्मानी हो जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से मैं बुरा करूंगा उस रास्ते से वो जो है जिस्मानी और गैर जिस्मानी हो जाएगा। एक तो आगे ये बात है। दूसरा एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, वो ये है कि बाज ऐसे छोटे गुनाह जिनको गुनाह की कैटेगरी, बड़े गुनाह की कैटेगरी में नहीं डाला है, उसके खाते में वो शुमार नहीं किए गए हैं, अगर वो बार बार अंजाम दिए जाएं, ज्यादा अंजाम दिए जाएं, तो वो भी कबीरा में तब्दील हो जाते हैं। आयतुल्ला दस्तगीब इस किताब के अंदर भी मेंशन करते हैं कि जहन में रखें कि वो गुनाह जो रिपीटेडली अंजाम दिए जाते हैं, वलो वो छोटे ही सही, जैसे किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से हसद रखना वगैरह वगैरह, वो रिपीट हो जाए तो फिर बड़े गुनाह में तब्दील हो जाते हैं। बड़े गुनाह अंजाम देने का जो आउटपुट है, जो नतीजा है, वो ये है कि इंसान जहन्नम का मुस्ताहक बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम इसके अंदर है, क्योंकि कुरान मजीद में इसको इसी तरह बेजयान भी किया है। हम चलते हैं कुरान मजीद की सूरह काफ है, सूरह काफ की आयत नंबर 49 है, 49, उसमें फरमाते हैं वुदी अल किताबु फतर अल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह व यकुलून या वैलतना मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आयत में है कि और नामे आमाल जब उनके सामने रख दिया जाएगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि मुजरिमीन उसके उस नामे आमाल को देखते हैं, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसके मंदरजात को देखकर डर रहे हैं, डरना शुरू कर देते हैं और कहते हैं एक दूसरे से को मुखातब करके, ओ कितनी बड़ी रिसवाई हो गई हमारी, कितनी बड़ी इंसल्ट हो रही है, ये किस किस्म की डिटेल है इस नामे आमाल में, इसमें तो हर छोटी और बड़ी चीज को नहीं छोड़ा है, सबको इसके अंदर लिख लिया है। लिहाजा जो है जरूरी यह है कि इंसान इस हवाले से जहन में रखे कि छोटे गुने गुनाह और बड़े गुनाह की जो तकसीम है वो हमारे जहन में आ गई, जिस्मानी गुनाह और गैर जिस्मानी गुनाह, उसको भी हमने अंडरस्टैंड किया कि जिस्मानी गुनाह इंसान जिस्म से अंजाम देता है, जैसे कोई चोरी कर ले, किसी का माल छीन ले, किसी को मारे नाहक जो है, और गैर जिस्मानी गुनाह जैसे हसद करता है, कदूरत रखता है, कंजूसी करता है, बुग्ज रखता है किसी से, कीना रखता है किसी का दिल में, ये सारे क्या हैं, वो जो है गैर जिस्मानी गुनाह के तौर पर शुमार किए जाते हैं। कुछ इसी के सिलसिले में रिवायात भी हैं, सूरह काफ की जो आयत पड़ी वो इसके अंदर मौजूद था, आप स्लाइड साथ में देख रहे होंगे कि जिस्मानी और गैर जिस्मानी गुनाह को हमने स्लाइड के जरिए से थोड़ी सी वजाहत करनी शुरू कर दी, जिसमें एक शख्स चोरी कर रहा है और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि कोई शख्स जो है या हासिद है या जो है बुग्ज और उसके शक्ल में जो है वो नजर आता है हमें। हम इंशाल्लाह अगले जो सेशंस होंगे उन सेशंस में हम इनके असरात की तरफ चले जाएंगे कि इनके आसार क्या हैं। मैं स्लाइड्स को यहाँ पर ऑफ कर रहा हूँ ताकि किताब की तरफ से हम किताब के हवाले से हम कुछ चीजें डिस्कस कर सकें जो आयतुल्ला दस्तगीर की किताब है। इब्तदाई तौर पर आज हमने बुनियादी जो नुक्ता था उसमें हमने ये चीज अंडरस्टैंड कर लिया बड़े गुनाह से क्या मुराद है और छोटे गुनाह से क्या मुराद है, छोटे गुनाह कब जाकर बड़े गुनाह हो जाते हैं, और जिस्मानी गुनाह से क्या मुराद है, गैर जिस्मानी गुनाह से क्या मुराद है। और आयतुल्ला दस्तगैब की जो किताब है उसके अंदर आगाज जो उनका हो रहा है वो एक इंतहाई आला सिफत और इंतहाई बड़ी सिफत जो हर इंसान के अंदर होनी चाहिए, और बहुत से जगहों पर हमें इस सिफत की न सिर्फ जरूरत होती है बल्कि ये सिफत न होने की सूरत में हम बहुत सी जिम्मेदारियां किसी बंदे को नहीं दे सकते हैं। और इसकी अपनी जो है मुख्तलिफ पहलू हैं। आगा आयतुल्ला दस्तगैब ने अपनी तकरीर में उस वक्त शायद इन चीजों को ज्यादा टच ना किया हो, तो लेकिन हम हमारी जरूरतें हैं तो हम टच करेंगे। वो जो मौजू है, वो जो आला सिफत है जो हर इंसान और हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए वो तकवा है। और तकवा की हकीकत, जिसको परहेजगारी हम उर्दू में और फारसी में इस्तेमाल करते हैं, उसकी हकीकत के और उसकी तारीफ के हवाले से आयतुल्ला दस्तगैब साहब लिखते हैं कि शरई इस्तलाह में खुद को हर उस चीज से रोकना जो आखरत के लिए नुकसानदेह हो। दूसरे अल्फाज में खुदा के हुक्म, उससे खुदा ने जिस चीज से मना किया है, जो हुक्म दिया है, उसकी जो है नाफरमानी ना करे। जो नाफरमानी नहीं करता है वो परहेजगार है। और इसकी दलील के तौर पर छठे इमाम की इस नूरानी हदीस को आयतुल्ला दस्तगैब ने बयान फरमाया है कि जिसमें फरमाते हैं कि जब छठे इमाम से सवाल किया कि तकवा वाली जो सिफत हर इंसान के पास होनी चाहिए तो ये जो तकवा है इसके माने क्या हैं, तो इमाम ने फरमाया ला यक़दु का हैसु अमारा का वला यदा का हैसु नहा का, जहां हुक्म खुदा है वहां सर तस्लीम है खम कर दो, और जहां खुदा ने मना किया है वहां से दूर हो जाओ। मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं कि ये बुनियादी तरीन सिफत हर इंसान की जरूरत है, हर मोमिन के लिए जरूरी है। जो जितना इसमें बेहतर से बेहतर होता जाएगा उतना जो है वो आला है। इंसान को तोला जाएगा तो इसी इनवान से तोला जाएगा, उसके आमाल, उसके अफाल, उसकी नीयतें, उसके अकवाल, तकवा की नीयत से। कितनी नाफरमानी की खुदा की, कितनी खुदा की के हुक्म को कबूल किया, बजा लाया, अमल किया, इस मेयार पर तोला जाएगा। बाकी सारे मेयारात बाद में आ जाएंगे। एक तो आ गया ये पॉइंट। दूसरा, बाज हमारे बहुत सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारीज होती हैं शरीय एतबार से, उसमें इस सिफत की अहमियत है बहुत ज्यादा। फिक्के में भी हम जाते हैं तो आप जानते हैं एक पेश ना ये पेश इमाम और पेश नमाज के लिए इब्तदाई तकवा की जरूरत है। इब्तदाई तकवा की डिफिनेशन महा मासूम ने इस तरह दी कि वो मुहर्रमात से बचता हो और मकरूहात पर इसरार न रखता हो। इसरार से मुराद यह कि बार बार मकरूह काम अंजाम न देता हो, खासकर कुछ मकरूह जो कि मकरूह शदीदा कहलाते हैं, और जो है वो हराम से बचता हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बुनियादी जरूरतों में से है। इसी तरह दीगर भी बहुत सारी मसलन चीजों के अंदर हम देखते हैं, किसी शख्स के को अगर कोई जिम्मेदारी देनी हो माशरे में तो दीनी जो कुरान और इतरत ने हमें तरीका बताया है उसमें यह है कि आप देखो वो शख्स मुतदय्यिन है या नहीं है। मुतदय्यिन से मुराद ये कि दीनदार है कि नहीं है। दीनदारी को हम कहाँ से जज करेंगे, क्योंकि नमाज पढ़ना हर इंसान फर्ज है, पढ़ लेता है, रोजा भी रख लेता है, तो ये इतनी ज्यादा बड़ा मैयार नहीं बनता। अगरची आगाज होता है लेकिन बड़ा मैयार नहीं है कि हम खुलासा कर लें, क्योंकि बस वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो वस्सलाम, हम उसको समझें कि ये शख्स मुतदय्यिन है, तदय्युन है, दीनदार हो गया है, इतना काफी नहीं है। एक जिम्मेदारी के लिए जब किसी शख्स की दीनदारी को देखना परखना होगा या खुद इंसान अपने आप को देखना चाहता है तो उसे दीगर तमाम चीजों में देखना होगा। इसलिए यहां से तकवा की दो ब्रांचेस, कम से कम दो ब्रांच बनती हैं, दो हिस्से बन जाते हैं। एक जाती तकवा है, जाती तौर पर इंसान अपने अमाल को अंजाम देने में मुस्ताहबात का भी पाबंद है, मकरूहात से भी बचता है। दूसरा, इसका एक सोशल या इज्तिमाई और समाजी पहलू है। आदमी इज्तिमाई एतबार से कैसा है, क्या उसके वो इज्तिमाई जिम्मेदारियां भी अदा करता है, इज्तिमाई जो वाजिबात उसके ऊपर हैं वो भी अदा करने की कोशिश करता है, शरी लिहाज से जो एक माशरे की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, माशरे के तमाम हिस्सों में है। कभी माशरे में वो इक्तिसादी जिम्मेदारी रख लेता है, कभी माशरे के अंदर वो जो है हक बात बोलने की जिम्मेदारी के नुमान से हो सकता है, कभी माशरे में कोई ऐसा फरीजा है जो फरीजे किफाई है, किफाई वाजिब में से वाजिब है, किफाई अंजाम देने में वो पीछे हटता है आगे आता है, फिर पेश पेश रहता है, इसी तरह सियासी मामलात में वो उसका रहबर कौन है, उसका लीडर कौन है, किसके पीछे जाता है, किसको अपना रहबर समझता है, किसको अपना रहनुमा समझता है और किस लेवल तक समझता है, किस तरह समझता है, इसमें भी कोई शरीयत का उसूल जाबिता, कोई कानून, कोई फरमान, कोई इमाम का बताया हुआ रास्ता, कोई कुरान का दिखाया हुआ रास्ता देखता है या नहीं देखता। इसी तरह इक्तसादी हवाले से, क्योंकि ये भी माशरे से ताल्लुक है, तो कमाता कैसे है, खर्च कैसे करता है, उसकी तरजीहात क्या है वगैरह, ये सारी चीजें लेवल्स बनती जाएंगे। लिहाजा तकवा की जो आयतुल्ला शहीद दस्तगीर ने इरशाद फरमाया, शुरू में यहाँ लिखा है और छठे इमाम की हदीस नकल की है, तो इसके दो हिस्से बन गए, एक जाती हैसियत बन गया, एक जो है इज्तिमाई एतबार से बन गया। यहाँ पर खुद आगा ने जो है एक और तकसीम भी बयान की है, जिसमें फरमाते हैं यानी अहकाम खुदावंदी को बजा लाने वाले, उसकी जिस चीज से मना किया है उससे बचने वाले, वो मुतकी लोग कहलाते हैं इमाम की, छठे इमाम की हदीस के हिसाब से। फिर फरमाते तकवा की दो किस्में हैं, पहली कस्म ये है कि खुदा की इताअत बजा लाना और उसे हासिल करना, उसके हुक्म को पर अमल दरामद करना, किसी वाजिब को न छोड़ना, और वो तमाम काम जिसके अंजाम न देने से खुदा नाराज होता है, गैज़ व ग़ज़ब का हकदार पा जाता है, जहां तक मुमकिन हो इसी तरह मुस्तहबात को भी तर्क न करे, जहां पॉसिबिलिटीज हैं, खास मुस्तहबात जो कि बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे शबे जुमा के आमाल हैं, दुआए कुमेल वगैरह की तिलावत है, नमाज जुमा है, बगैर किसी वजह के ना छोड़ना। इसी तरह जो है अल्लाह भला करे साल में इतने अहम दिन आते हैं, 15 शाबान है, माह मुबारक रमजान की रातें हैं, शबाए कदर हैं, फिर जो है विलादतें, शहादतें वगैरह हैं, ये सारे जो है कितने हैं, ये ज्यादा अहमियत वाले मुस्तहबात में से हैं। फिर योमिया मुस्तहबात भी, दिगर मुस्तहबात भी हैं, और कह रहे हैं कि उन चीजों को छोड़ दे जिसमें जो है तकवा की दूसरी किस्म हराम चीजों से बचना है, जैसे जिन बातों से मना किया है उसे तर्क कर दे। हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी है, बस मैं अब एंड की तरफ जा रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बड़ी बीमारी ये है कि हम लोग मुंह को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाज़ औक़ात हम लोगों की ज़ाती मसाइल को भी बयान करते हैं, अगर हमारे इल्म में आ जाती हैं, हमें पता चलता है, हम ख्याल नहीं करते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, मैं शायद सोच रहा हूँ उस आदमी को मैं बेइज्जत करूंगा, उस आदमी के बारे में जो बातें हैं वो लोगों को बताऊंगा ताकि उसकी शख्सियत थोड़ी सी कम हो जाए, वो थोड़ा सा लोगों की नजरों में गिर जाए, हम शायद इस तरह मुख्तलिफ ख्यालात हमारे अंदर आते हैं, जो जो भी है बहरहाल, लेकिन हम ये नहीं जानते उसी वक्त की मैं खुद को नुकसान पहुंचा रहा हूं। ये इस तरह है कि इंसान जो है अपने जिस्म से कोई चीज काट के फेंक रहा है, ये बजाहिर मजे ले रहा है दूसरे की बातों को। इसीलिए देखें खुदा ताला इतना करीम और रहीम है कि खुदा ने पर्दा डाला हुआ है हर चीज के ऊपर, हमारे हर आमाल के ऊपर पर्दा डाला है, अगर खुदा ये पर्दा ना रखता तो हमारा हशर क्या होता, घर घर में हम एक दूसरे को मुंह दिखाने के लायक न रह जाते, क्योंकि खुदा जानता है कि हम कमजोर लोग हैं, हमारे आमाल कमजोर हैं, हमारे इरादे नियतें कमजोर हैं, लिए पर्दा रखा, तो हम एक दूसरे के पर्दे क्यों फाड़े। तो लिए लिहाजा बहुत जरूरी है, आयतुल्ला कहते हैं जिन बातों से मना किया गया उसको तर्क करना चाहिए। इसी तरह बसरन हराम है, हराम सिर्फ ये नहीं है कि उसने जानवर को जिबा नहीं किया है या फला वो प्रोडक्ट के अंदर अल्कोहल की इतनी क्वांटिटी या मकदार मौजूद है तो वो हराम हो गया। हम जब हराम की बात करते हैं तो फकी इस तरह के हलाल व हराम, हलाल है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन सिर्फ यही हलाल व हराम नहीं है, हराम वो भी है जिसमें मेरा हक नहीं है, हराम वो भी है जो किसी दूसरे का हक है जिसका मैं, या हराम वो भी है जिसको मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, गलत चीज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। हलाल पैसा गलत चीज में इस्तेमाल हो जाए तो भी गलत चीज में इस्तेमाल करना हराम है। मुझे एक आदमी कहे जी मेरे मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, और लेकिन अब मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ फर्ज करें खुदा ना करे गलत काम के लिए, तो वो जायज नहीं है कि उस पैसों को, वलो आपका पैसा है, आपका मेहनत की कमाई है, लेकिन आप गलत रास्ते में उसको खर्च नहीं कर सकते हैं। लिहाजा आयतुल्ला कहते हैं कि हराम बंदे का वो अमल है जिसके इर्तकाब से अजाब इलाही का मुस्तौजिब ठहरे, मुस्तौजिब यानी खुदा की, या खुदा के ऊपर ये जो लफ्ज मुस्तौजिब अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि खुदा ने खुद पर वाजिब करार दिया है, क्योंकि कोई और हस्ती नहीं है जो खुदा पर वाजिब कर दे, तो अल्लाह सुबहान तआला ने खुद पर वाजिब किया है कि जो हराम काम करेगा, हराम के आमाल अंजाम देगा, मैं उस पर अजाब डालूंगा। ये मुझ पर फर्ज हो गया कि मैं उस पर अजाब डालूंगा, इसलिए लफ्ज मुस्तौजिब का इस्तेमाल किया जाता है। लकद फर्रद अल्लाह अला नफ्सिही या लकद वजब अल्लाह अला नफ्सिही, इस तरह के हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम के अकवाल मिलते हैं। जहां पर खुदा ने खुद पर फर्ज करार दिया हो कि अगर कोई ऐसा अमल अंजाम दे तो मैं उसको सजा दे के ही रहूंगा, कौन सी चीज उस सजा को टाल सकती है? खुद अल्लाह की जात टाल सकती है, कोई और नहीं टाल सकता है। मासूम ये फरमाते हैं, हमें कहते हैं कि ये जहन में रखें। एक और बात वो कह रहा है कि मकरूहात को भी तर्क करें। बाज़ मकरूहात ऐसी हैं कि वाकई उसे तर्क कर देना चाहिए। फर्ज करें, देखें फिकी एतबार से ना, बाज़ जानवरों के गोश्त हमारे लिए मकरूह है, जैसे घोड़े का गोश्त खाना, लेकिन हम नहीं खाते ना, उस मकरूह को हमने छोड़ दिया हुआ है। इस तरह कुछ और मकरूहात भी ऐसे हो सकते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए, खासकर कि मकरूहात शदीद हैं। इंसान अगर मकरूहात को छोड़ना शुरू कर देता है तो ये उसकी एक बेहतरीन सीढ़ी होती है। एक हदीस मैंने पढ़ी थी, उस हदीस के अंदर है कि इंसान अगर मकरूहात को छोड़ दे और मुस्तहबात की तरफ भी तवज्जो करने लग जाए तो खुदाए सुबहान फरिश्तों को उसके ऊपर मौकल कर देता है, यानी ड्यूटी लगाता है फरिश्तों की कि इस बंदे की हिफाजत करो। भाई देखो, ये मकरूहात को भी सोच समझ कर छोड़ रहा है, मुस्तहबात पर भी अमल कर रहा है, इस बंदे की आप ड्यूटी करें, इसको हराम में जाने से रोकें, मदद करें इसकी ताकि ये ना जा सके। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है। दुरुस्त है कि खुदाए सुबहान ने मकरूहात के ऊपर हमें सजा नहीं रखी है, अगर कोई मकरूह काम इंसान करता है तो उसके ऊपर अजाब तो नहीं है ना, ना यानी कोई गुनाह किया है उसने, लेकिन ये हमारे जो अच्छे आमाल हैं या हमारी जो शख्सियत है उसका दर्जा गिराते हैं, यानी जो अच्छा दर्जा है हमारी शख्सियत का, एक मोमिन का, ईमान का जो लेवल है वो लेवल गिरा देते हैं, हमारे अमल की जो अच्छी क्वालिटी थी उसको कम कर देते हैं। हम इंसानों में है कि हम हर चीज में अच्छी क्वालिटी ढूंढते हैं, गाड़ी खरीदने लग जाए तो भी अच्छी ढूंढेंगे, कपड़े अच्छे ढूंढेंगे, खाना भी अच्छा ढूंढेंगे, घर भी इसी तरह अच्छा ढूंढते हैं। जाहिर है कि हम में से हर कोई चाहता है कि अच्छी क्वालिटी की चीज उसके पास हो। तो अपनी इबादात में भी और अपने आमाल और अकवाल और अल्फाज में भी हमें अच्छी चीज ढूंढनी चाहिए, क्वालिटी की चीज ढूंढनी चाहिए ना। क्यों हम सिर्फ नॉर्मल क्वालिटी पे राजी हो जाए? बाकी दुनिया में किसी चीज में भी हम लो क्वालिटी पे राजी नहीं होते, लेकिन इस मसले में आके लो क्वालिटी पे हमें क्यों राजी होना चाहिए? यहाँ पर भी हमें मोमिन है, मोमिन तो जहीन होता है, समझदार होता है, वो लो क्वालिटी पे आके राजी नहीं होता कि बस वो कहे कि मैं फर्ज अदा कर दिया जी, मैं ठीक हो गया, ये तो हराम तो नहीं था ना आगा जी, फलाना हो गया। हाँ कुछ इसीलिए मकरू को मकरू इसलिए रखा है, आखिरी बात कर रहा हूँ, इसलिए रखा है मकरू को मकरू की बाज औकात इंसान ऐसे हालात का शिकार हो सकता है कि जिसकी वजह से उसको वो मकरू करना पड़े, लिहाजा अगर करना पड़ गया तो कोई उसको गुनाह नहीं किया उसने, खुदा मुताल जो है उसके ऊपर कोई अजाब नहीं डालेगा उसके उस मकरू की वजह से, लेकिन जो है आम हालात में उसको वो मकरू नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी का काम अंजाम देना चाहिए। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, मर्द के लिए यह है कि वो एक कच्छा पहन के भी नमाज पढ़ सकता है तो उसकी नमाज तो अदा हो जाती है ना, लेकिन आम हालात में अगर कोई ऐसा करता है तो मकरू है, तो क्यों करता है भाई? जब पूरे कपड़े पहन के आदमी नमाज पढ़ सकता है मुसल्ले में, हत्ता हमें कहा गया हो सकता है तो नमाज के लिए मखसूस कपड़े रखा करो या पाक साफ कपड़े पहना करो, सिर्फ पाक नहीं साफ भी होने चाहिए, कहा साथ में, अच्छा है कि साफ भी हो। अगर नहीं है, कहे मजबूरी होती है, काम पे है, आदमी फंसा हुआ है, मजबूर है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जैसे कि आप लोग फैक्ट्रीज में होते हैं वहां पे पूरा एक यूनिफॉर्म आपको पहनना पड़ता है, खासकर अगर बाहर बाहर काम कर रहे हो तो उन हालात में कोई मसला नहीं है, वो मेले भी हों गंदे भी हों तो जाहिर फरीजा अदा करना है, लेकिन आम हालात में नॉर्मल हालात में तो इंसान कोशिश करे अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर आदाब भी इसी तरह इबादत के बने। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो इंसान को एक अच्छे इंसान बनने में मददगार बनती हैं। इंशाल्लाह मैं तेजी से खुलासा करता हूँ, 1 मिनट हमारे पास रह गया, उस 1 मिनट में खुलासा ये है, हमने गुनाह ने कबीरा का आगाज किया जिसमें हमने ये अर्ज किया कि देखें गुनाह का ताल्लुक इंसान की 3 चीजों से, इंसान की नीयत से है, उसके अमल से है और उस वो जो कुछ जबान से बोलता है उससे है। कुरान मजीद में गुनाह के लिए मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो मरकजी लफ्ज है वो लफ्ज ज़म्ब है, लेकिन इस्म सयाह मासियत खतिया जुर्म मुनकर फाहिशा शर ये सारे जो है गुनाह के माने में। फिर हमने कहा गुनाह की कस्में बयान की, और उसमें एक किस्म तो बड़े गुनाह की है, एक छोटे गुनाह की है, और जिस्मानी गुनाह और गैर जिस्मानी गुनाह की हमने बयान की। और साथ में एक होशियार वाला पॉइंट जो अलर्ट करता है इंसान को, वो अलर्ट वाला नुक्ता ये था कि छोटे गुनाह बार बार अंजाम दे तो वो बड़े गुनाह में बदल जाते हैं। और आखिरी नुक्ता हमने ये अर्ज किया जो कि किताब के अंदर था, तकवा और परहेजगारी के हवाले से, जहां से शुरू किया आगा ने, और बता दिया कि तकवा हर इंसान के लिए जरूरी है। बाज हालात में इंसान की दीनदारी की तकवा दलील है। कुछ जिम्मेदारियां जब इंसान लेता है माशरे के अंदर, तो जो मैयार पर खा जाता है इससे पहले कि उसके पास इल्म है कि नहीं है, उसके पास तजुर्बा है कि नहीं है, सबसे पहले देखते हैं वो दीनदार कितना आदमी है, ईमानदार कितना है। हमारी जबान में, उर्दू में हम कहते हैं ईमानदार कितना है, ये चीजें हम परखते हैं और देखते हैं। उसके बाद फिर हम दीगर चीजों की तरफ भी जाते हैं, सलाहियत है कि नहीं है, फलान है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं, वो बात के मसले हैं। पहला मसला ये है जी कि वो दीनदार शख्स है, ईमानदार शख्स है या नहीं है। परवरदिगार आलम से दस बदुआ होते हैं कि परवरदिगार कुरान और इतरत के सदक़े में हमें आपके दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में हूँ, अगर आप चाहें तो आपके पास 8 मिनट हैं या 8 मिनट से भी कम हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का कोई मुलाहजा, कोई बात, कोई सवाल, कोई चीज़ है तो मैं आपकी खिदमत में हूँ।